जमुना तेरा वनचारी, जमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जगत गुरु शिला प्रभु पदा जगत गुरु शिला प्रभु पदा, हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल, और प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट किम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के आठवें स्कंद के नवे अध्याय में मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री कृष्ण जी का अवतार, श्री कृष्ण भगवान का अवतार, तो श्लोक नंबर 4 पे हम लोग हैं। तो मेरे बात दोहराएंगे, यहाँ स्क्रीन पे भी है। नवयम त्वा अमरैर्दैत्ये सिद्ध गंधर्व चारणे ना स्पृष्टा पूर्वं जानी लोक ईशा च कृतन भी न त्वाम अमरैर्दैत्य न वयम त्वा अमरैर्दैत्य सिद्ध गंधर्व चारणे न अस्पृष्टा पूर्वं जानी लोक ईशा च कुतन भी न वयम त्वा अमरैर्दैत्य सिद्ध गंधर्व चारणे ना अस्पृष्टा पूर्वं जानी लोक ईशा च कृतन भी। सिद्ध गंधर्व चारण माता जी सिद्ध गंधर्व चारण ना नहीं वयम हम त्वा तुमको अमरैर देवताओं द्वारा दैत्य असुरों द्वारा सिद्धों द्वारा गंधर्व द्वारा चारण तथा चारणों द्वारा न नहीं अस्पष्ट पूर्वाम किसी के भी द्वारा कभी भी न तो भोगी गई न स्पर्श की गई। जानिम ठीक से जान लो लोक ईश ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशकों द्वारा च भी कुता क्या कहा जाए नभी मानव समाज द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की मनुष्यों की कौन कहे, देवता असुर सिद्ध गंधर्व चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो। कृपया दोहराइए, मनुष्यों की कौन कहे? देवता असुर सिद्ध गंधर्व चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो। तात्पर्य, असुरों तक ने यह शिष्टाचार निभाया कि उनमें से कोई भी विवाहिता स्त्री को विषय वासना से युक्त होकर संबोधित ना करे। महान विश्लेषक चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत पर दारेशु, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की पत्नी को अपनी माता माने। असुरों ने यह मान लिया था कि वह तरुण सुंदरी मोहिनी मूर्ति जो उनके समक्ष आई थी निश्चय ही अविवाहिता थी। अतः उन्होंने यह मान लिया कि संसार के किसी भी व्यक्ति ने जिसमें देवता गंधर्व चारण सिद्ध सम्मिलित हैं उसका कभी स्पर्श नहीं किया होगा। असुर जानते थे कि वह तरुणी अविवाहिता थी, अतः उन्होंने उसे संबोधित करने का साहस जुटाया। उन्होंने यह मान लिया कि वह तरुणी मोहिनी मूर्ति वहां पर उन सब के बीच असुर देवता गंधर्व इत्यादि अपने पति की खोज करने आई है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पादकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च। श्री रूपम सागर जातम सगणा ललिता श्री विशाखान्वित। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस्कॉन के हिंदी भागवत कक्षा में आप सबका स्वागत है और मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर जो ये प्रसंग चल रहा है ये समुद्र मंथन का है। देवताओं में और दानवों में जो ये संधि हुई कि सब लोग समुद्र मंथन करेंगे मिलके और जो सब कुछ मिलेगा उसको आपस में बांट लेंगे और अमृत निकलेगा एंड में, ये बात पहले बता दी गई थी। और अमृत की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बीच में बहुत चीजें निकली और अब जब अमृत निकला धन्वंतरी प्रकट हुए तो सब लोग बहुत बेचैन हो चुके थे क्योंकि बहुत तपस्या बहुत मशक्कत के बाद में बहुत मेहनत के बाद में ये अमृत निकला और सब लोग एकदम से अमृत की तरफ भागे और आपस में छीना झपटी शुरू हुई देवताओं में और दानवों में। तभी भगवान ने, क्योंकि इस समुद्र मंथन में भगवान के कई अवतार हुए, जो मंदराचल पर्वत था उसको लाने के लिए गरुड़ लेके आए, उसको जो वहां पे टिकाने के लिए भगवान ने कुरुमा अवतार लिया, तो इस तरह से भगवान ने तरह से, अब यहां पे जब झगड़ा हुआ तो भगवान ने मोहिनी मूर्ति के रूप में अवतार लिया। अब कोई कह सकता है कि भगवान को मोहिनी मूर्ति के रूप में क्यों आना पड़ा, क्योंकि सारा संसार जो मृत्यु लोग जो संसार है इस संसार में यही एक चीज है जिसके बारे में कहना कि मैथुनागार मतलब ये लस्ट जो हमारी है इसके कारण से हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं और जन्म मरण के चक्कर में लगे हुए हैं। तो यहां से ब्रह्मलोक तक यही सब चीज लगी हुई है और इस कारण से बार बार जन्म लेना पड़ता है और दैत्य लोग जो है इस बात से ज्यादा ग्रसित हैं क्योंकि उनके अंदर अपना एंजॉयमेंट, अपना आनंद लेने की ज्यादा स्वभाव नेचर होती है, स्वभाव होता है, तो वो इसलिए एकदम से उस मोहनी मूर्ति को देख के आकर्षित हुए, जो कि इस संसार की नेचर है, इस संसार का स्वभाव है कि सब लोग, और ये शास्त्रों में भी कहा गया, भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में ये बात आई, लोके वव्य आमिष मध्य सेवा नित्य ही जंतुर नहीं तत्र प्रचोदनात्, कि लोके लोग इस लोक में, लोकों में लोके वव्या, वव्या मतलब सेक्स लाइफ, वव्या आमिष, आमिष मतलब मीट ईटिंग, लोके वव्या आमिष मध्य सेवा, और ये इंटॉक्सिकेशन, द्रव्यों का, पदार्थों का तरह तरह से सेवन, मादक द्रव्यों का, लोके वव्या आमिष मध्य सेवा नित्य ही जंतुर, और जंतु नित्य अनादि काल से इन चीजों में लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं इसमें इस बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया, क्योंकि जो रोकने के लिए बातें थी, ये नहीं कि भाई कुछ शास्त्रों में है इस तरह के वर्णन, लेकिन वो उन लोगों को वेदों को मानने के लिए, ताकि वो अगर कहीं और जाके इधर उधर से ज्ञान प्राप्त करें, उससे बेटर है कि वो वेदों की शरण में आए और वहां से सब चीजें, क्योंकि उसी में फिर आगे आया कि, तो ये जो अब जो इसमें जंतु शब्द आया, तो मैं अभी पुरानी बात हो गई, ऑलमोस्ट 15-20 साल पुरानी बात है, जब ये वर्ष मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि जंतु व्यास देवी जी ने यहां पर यूज किया, जंतु का मतलब है कि कोई भी जंतु, अब जंतु में तो ये मान सकते हैं कि भाई वव्या, सब जंतु जो है प्रोक्रिएट करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो वो तो कॉमन बात हो गई, वव्या आमिष, और एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जीव जीव से भोजनम, ये भी बात क्लियर हो गई, लेकिन मध्य सेवा, अब ये लगा कि भाई मध्य सेवा तो ये तो ह्यूमन लोग ड्रिंक करते हैं तरह तरह की शराबें, तो जंतु की बात कहां से आ गई, कि जंतु भी लगे हुए हैं इस काम में, तो मुझे फिर तभी एक ऐसा इत्तफाक हुआ कि जब मैं अमेरिका में पीएचडी कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो से, तो वहां उसके बगल में 10 मील की दूरी पे एक दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, और वहां पे बांग्लादेश के एक आलोक डे वो अपनी पीएचडी कर रहे थे, और उनकी लैब में मैं गया, और वो किस बात की पीएचडी कर रहे थे कि चूहों को अगर शराब पिला दें तो वो क्या करेंगे, अब उनकी लैब में मैं गया तो चूहे उसमें छोटे छोटे पिंजरों बंद है, और उसमें ट्यूब लगी हुई है, उस ट्यूब में जब वो जैसे बॉल पेन में जब दबाते हैं बॉल पेन तो इंक निकलती है, ऐसे ही उसमें अरेंजमेंट था कि जब मूस के पास लाएंगे तो उनके मुंह में वाइन चली जाएगी, दूसरी ट्यूब में खाने का अरेंजमेंट था कोई लिक्विड, अब उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, रात भर तो बैठ नहीं सकते, अब कैमरे लगाए हुए थे, तो चूहों ने ड्रिंक किया, ड्रिंक करके मार पिटाई करी, एक दूसरे को काटा चूटा, और उसके बाद में वो थक के सो गए, तो ये दिखाया कि वो खाने से ज्यादा उस वाइन की उस पे जाके ज्यादा टिप पे उन्होंने ड्रिंक किया, तो जंतु वहां सिद्ध हो गया कि जंतु भी इन चीजों में लगे हुए, सब जो जीव जंतु इन चीजों, लेकिन शास्त्रों में इस बात का बहुत जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि वो रोकने की बात है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या है, ह्यूमन लाइफ मीन्स कंट्रोल, ह्यूमन लाइफ मीन्स रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब कोई भी कार्य करें सीमाओं में रह के करें, यद करोशी यद अश्नाशी यद जहोसी ददासी, जो भी कुछ करें भगवान को ध्यान में रखकर करें, क्योंकि योग का मतलब यही है हर चीज को भगवान से जोड़ना है, जो भक्त लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस्कॉन में आके जुड़े हैं उन्हें मालूम है कि यहां पे जैसे और जगहों पे जाएंगे भगवान है उनका विग्रह है प्रकट है प्रकट है, जैसे भी भगवान का विग्रह वहां स्थापित हुआ लोग जाते हैं माथा टेकते हैं कुछ भोग चढ़ाते हैं कुछ धन की दक्षिणा वगैरह देते हैं भगवान के दान पा उसमें हुंडी में, तो ये हमारा कल्चर है, तो लेकिन इस्कॉन में हम लोग सिर्फ इतना ही नहीं करते कि तुम आए दर्शन करके चले गए बाय बाय, हम लोग उनको ले जाके भगवान का नाम करना सिखाते हैं, उनको अपने से जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उसमें उनका कल्याण है, हम किसी से ये नहीं कि आइए दक्षिणा दीजिए और जाइए, ऐसा नहीं हम लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं आइए प्रसाद खाइए, आइए भजन कीजिए, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए, जितना भी आपके जैसे आपका भाव है भावना है उसी हिसाब से आप दान दक्षिणा पूजा पाठ वगैरह में कीजिए, अब यहां पे असुरों ने उस स्त्री को देखा जो मोहिनी मूर्ति रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए, तो उनके मन में यह देखा कि भाई ये उस तरह से सजी हुई नहीं है जैसे कि विवाहिता होती है। विवाहिता मतलब बिंदी है और ये मंगलसूत्र है या सिर में मांग में जो है वो सिंदूर वगैरह है, तो ये चूड़ियां हैं ये सब, तो ये इतना सब जो श्रृंगार है ये विवाहित स्त्रियां करती है। जैसे यहां भी हमारे इस्कॉन में भी विदेशी जो हमारी माताएं हैं जो वो आती हैं, तो यहाँ पे लोग उनको परेशान ना करे तो बिंदी लगा लेती है ताकि लोग उन समझे विवाहित है, तो फिर उनको लोग तंग नहीं करते। ये कल्चर आज भी है भारत में कि जब किसी की बिंदी किसी के मांग में सिंदूर वो देखते हैं तो वो लोग उनको परेशान नहीं करते। हालांकि अब तो चीजें बदल रही हैं, लेकिन उस समय के दैत्यों में भी इतनी अकल थी, इतनी समझ थी कि उन्होंने उसकी तरफ एक अविवाहिता के रूप में देखा जो कि लग रही थी, और ये कहा कि भाई ना तो न वयम मतलब हम लोग और अमरेर, अमरेर मतलब देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण, किसी ने कभी आपको टच नहीं किया, आपसे बात नहीं की, आप किसी के साथ में एंगेज नहीं हुई, तो इसलिए हम आपसे अट्रैक्टेड हैं। तो वो मतलब उनकी तरफ आकर्षित हुए उनकी तरफ, और ये भगवान का पर्पस था। और ये नेचर भी होती है, ह्यूमन नेचर है। अभी यहां से कोई बहुत ब्यूटीफुल बहुत फेमस कोई लेडी एंटर करे सब लोग नजरें पीछे जाएंगी, क्योंकि ये नेचर है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस में कृष्ण भावना अमृत संघ में हम लोगों को शुरुआत से सिखाया गया कि ह्यूमन लाइफ मीन्स कंट्रोल। अब कंट्रोल करने की ताकत कहां से आएगी ना, ये भी समझने की बात है। जैसे सदा सच बोलो, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत देखो, ये प्रवचन है, अच्छे लगते हैं, करना चाहिए, लेकिन कोई कर नहीं पाता। तो करने की क्षमता, करने की इच्छा, पालन करने की इच्छा कहां से, दृढ़ता कहां से आएगी, उत्साह निश्चय धैर्य, ये कहां से चीजें आएंगी, इसका पूरा एक प्रोसेस है जो कि यहां कृष्ण भावना अमृत में श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्टैब्लिश किया। नहीं तो कोई भी सेंस कंट्रोल पे इस्टैब्लिश नहीं हो सकता, नहीं जम सकता, नहीं टिक सकता। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, हम लोग डेली भागवतम की कथा में बैठते हैं, डेली भागवतम की कथा सुनते हैं, क्यों, डेली माला करते हैं, एक भी दिन जैसे खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, ऐसी माला करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ये हमारा डेली का सिस्टम है। क्योंकि यहीं से ही तो वो ताकत मिलती है कि जो हम चार प्रिंसिपल को फॉलो कर पाए, जो कि लोके व्यवयामिष मध्य सेवा, वहां पे भी रेगुलेशन है कि जैसे भागवत पुराण में 11.5.11 में कहा कि लोके व्यवयामिष मध्य कि विवाह सेक्स के लिए, व्यवहार के लिए, सेक्स लाइफ के लिए विवाह, विवाह की स्थापना हुई है कि आप बाकायदा सब समाज के सामने एक स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें, एक स्त्री एक पुरुष पुरुष को अपने पति के रूप में ग्रहण करें, ये व्यवस्था है इसका। जैसे लोग कहते हैं कि विमेन औरतों का आंदोलन है, मैं आजाद होना चाहती हूं, मुक्त होना चाहती हूं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूं, कोई मुझे कोई रोके नहीं, कोई मुझे कोई टोके नहीं, मैं किसी की सेवा नहीं करना चाहती, मैं पति की सेवा नहीं करना चाहती। तो एक पति को छोड़ के जैसे मुक्त होने के नाम पे बहुत सारे पतियों की सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। क्यों, अधर्म अभिभवात कृष्ण, अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट रखा भगवान कृष्ण को पहले चैप्टर में भगवद गीता में ना लड़ने का, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदूषंती कुलस्त्रिय स्त्रीशु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अब अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट रखे, क्या चार आर्ग्यूमेंट रखे ना लड़ने के, पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, कंपैशन दया करो, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था, मारना पीटना बुरी चीज है, हत्या है, किसी को मारना नहीं चाहिए, तीसरा आर्ग्यूमेंट था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, परिवार की जो संस्था है वो खत्म हो जाएगी। क्यों कह रहे हैं आप स्त्री शुद्ध अधर्म अभिवाद कृष्ण, कि ये जो औरतें हैं जब युद्ध होगा ये सब आदमी मर जाएंगे, ये आदमी क्या है, कोई किसी का भाई है, बाप है, बेटा है, तो वो औरतें अनाथ रह जाएंगी। अनाथ मतलब उनकी केयर कौन करेगा, उनको कौन बचाएगा, किससे, किससे बचाएगा, स्त्री शु दुष्टाशु, कोई दुष्ट व्यक्ति समाज में बैठा हुआ है जो आएगा और हेल्प करने के नाम पर उसको एक्सप्लॉइट करेगा, तब क्या होगा। अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट रखा जायते वर्ण संकर, ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिन्हें अपने बाप का नाम मालूम नहीं, कितना समाज का, और आज ये चीज 5000 साल पहले अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट रखा और आज ये चीज हमारे सामने है। कलयुग के 5000-6000, 5000-5500 साल निकले और इतने में कितना करप्शन हो चुका, बिजली हवा हवा और पानी सब दूषित हो चुका, वातावरण दूषित हो चुका, मंद सुमंद मतियो अल्पायुषा, ये सब कलयुग के सिम्टम है जो आज हम लोग देखने को मिल रहे हैं जगह जगह। समाज का कितना पतन हो चुका, भक्त लोग रात दिन मेहनत करके, खाली कोई नहीं बैठा हुआ है, अपनी साधना करते हैं, सुबह उठते हैं, माला करते हैं, उसके बाद में धूप में बरसात में सर्दी में बाहर खड़े होके तरह तरह से किताबें बांटते हैं, तरह तरह से लोगों को मंदिर लाते हैं, ग्रुप बना के यहां लाते हैं, तरह तरह के मंदिर खुल रहे हैं इस्कॉन के हजारों, सब भक्त लोगों के कारण है क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भक्त 99.99% भक्त निस्वार्थ भावना से सेवा में लगे हुए हैं, 0.01 छोड़ देते क्योंकि ये कलयुग है। हम उन 0.01 की तरफ ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं आगे बढ़ने। 99.99% जो भक्त हमारे निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं सुबह शाम भगवत, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा यह एकदम परमम गुह्यम मत भक्त अभिधास्यते, ये जो परम गुह्य ज्ञान है जो दूसरों को बताता है उससे ज्यादा, न च तस्मात मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा, मुझे उस आदमी से ज्यादा, उस व्यक्ति ज्यादा, उस पर्सन ज्यादा कोई प्रिय नहीं है उससे ज्यादा की जो मेरे बारे में दूसरे को बताए, जो भक्ति में लोगों को जोड़े। इस्कॉन का मिशन ही यही है, प्रीचिंग प्रीचिंग प्रीचिंग, बाहर जाओ किताबें बांटो लोगों से मिलो, अमार आज्ञा गुरु हुईया तारो हुई देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जहां भी बैठो, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, किसी भी संस्था में जाओ, किसी भी जॉब पे जाओ, कहीं भी जाओ, वहां सब लोगों को भक्ति से, भगवान कृष्णा की भक्ति से जोड़ दो। ये जोड़ना ही योग है और योग में जुड़ना ही योग है, भगवान की भक्ति में जुड़ना ही योग है। और तरह तरह की चीजें जिंदगी में देखने को मिलती हैं, भक्तों के जीवन में भी तरह तरह के विघ्न आते हैं, भक्त लोग जानते हैं कि ये सब क्योंकि हम लोग जो भगवान की शरण में आ चुके, माला ले चुके, हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, वैष्णव अपराध भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को रिकवर करना होता है, दोबारा फाइट करना होता है माया से, कभी गिव अप नहीं करना होता है। तरह तरह के प्रलोभन है, तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन है जो हमें खींच के ले जाते हैं। हम लोग और मंदिरों में और संस्थाओं में और गोस्वामी और संत लोग जो कह रहे हैं, कहने दो, जो वहां हो रहा है होने दो, हम प्रभुपाद जी के हो चुके, हम इस्कॉन के हो चुके, हमें अब कहीं कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं है, हमें यहां सब कुछ मिलता है और तो प्रसाद भी पूरा फ्री मिलता है। ये भक्तों का समर्पण है। कौन सी किस जगह में, एक बार सैन होसे में कुछ किसी के साथ में हिंदू मंदिर में चला गया, बहुत बड़ा हॉल, वहां पे ऑल्टर, ऑल्टर के ऊपर किसकी मूर्ति नहीं रखी थी आप बता नहीं सकते, 50 की मूर्ति रखी हुई थी, कोई बात नहीं चलो वो भी ठीक है। उसके बाद में वहां किसी ने कुछ आरती वारती जय जगदीश हरे वगैरह करने के बाद जब बाहर निकले तो कोई माता जी पोहा बना के लाई थी और एक एक चम्मच सबके हाथ में दिया प्रसाद। हमारे इस्कॉन में ऐसा नहीं है, हमारे इस्कॉन में फुल प्लेट है सबके लिए। इतना बड़ा अनुष्ठान कौन चला सकता है आज विश्व में इस्कॉन? इसलिए ये जो इतनी बड़ी सेवा सब लोगों ने, हम लोगों ने, भक्तों ने उठाई हुई है भगवान की, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। इसमें मैं अगेन बार बार जो भक्त आज इस्कॉन में जुड़े हुए हैं उनको नमस्कार करता हूं, और जो लोग आज इस प्रचार में और इस्कॉन के साथ जुड़ के इस काम को आगे बढ़ाए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे ले जा रहे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और जो भी लाइफ में होता है भक्तों की, भक्त लोग उसको भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करते हैं। जैसे कि एक बार एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ शिकार पे गया, वहां कुछ ऐसा उपक्रम हुआ कि उनका रस वगैरह पलट गया और वो राजा की जो उंगली कट गई। अब वो जब लौट के आए तो बड़े दुखी, जैसे कैसे करके लौटे तो प्रधानमंत्री जी ने राजा को कहा कि महाराज भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, आपकी उंगली कट गई, इसके पीछे भी भगवान की कोई प्लान होगा। राजा बोले तुम मूर्ख हो, मेरी उंगली कट गई और प्लान बता रहे हो, इसको जेल में डाल दो। अब प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया। और प्रधानमंत्री भगवान पर भरोसा रखते हुए जो भगवान की इच्छा, जेल में डाल दिया, कोई बात नहीं। अब राजा फिर शिकार खेलने गए, वह जंगल में रास्ता भटक गए, वहां जो आदिवासी लोगों ने उनको पकड़ लिया कि भाई ये तो बढ़िया बलि चढ़ेगी, हष्टपुष्ट आदमी है। अच्छा, बलि चढ़ाने के लिए उनको उपटन उपटन तैयार किए, देखा ये तो उंगली कटी हुई है, तो भैया खंडित की बलि नहीं चढ़ती, तो छोड़ दिया। अब राजा भड़कते भड़कते वापिस पहुंचे, सबसे पहले उस मंत्री को बुलवाया, भैया बाहर आओ, तुमने कहा था जो भगवान करते अच्छा करते हैं, अच्छा हुआ मेरी उंगली कट गई थी, अच्छा हुआ तुमने कहा था अच्छा हुआ, तो अच्छा ही हुआ, आज बच गया मैं। तो मंत्री ने कहा, महाराज एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आपने जो मुझे जेल में डाला था वो भी मेरे अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर मैं आपके साथ होता तो आप खंडित थे लेकिन मैं कंप्लीट था, तो मेरी बलि चढ़ जाती, तो आपने मुझे जेल में रखा तो मैं भी बच गया। तो भगवान जो करते हैं उनके करने में हजारों चीजें सेटल हो जाती हैं, कभी भी कोई डाउट ना करे, कोई भी संदेह, संदेह करने की जरूरत नहीं है जरा सी भगवान के प्लान में। बस यही फर्क है भक्तों में और सांसारिक लोगों में। सांसारिक लोगों के जीवन में जब दुख आता है वो क्या कहते हैं, अरे मार दिया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, बॉस की वजह से हो गया, वाइफ की वजह से हो गया, बच्चों की वजह से दुखी हूं, और अगर कोई नहीं मिला आसपास दूर दूर कोई नहीं मिला, भगवान की वजह से हो। जब कोई नहीं मिलता तो हम भगवान को ब्लेम करते थे आराम से कि भगवान मेरे साथ क्या कर दिया तुमने, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा दिमाग क्या हो गया कि मेरे जैसे आदमी को, मैं इतना सज्जन नाइस आदमी हूं, मुझे दुख दे गया, आपको क्या मिला। लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर विधान नमस्ते जीवे तु मुक्ति पदेश दाय भाग। हे भगवान, हे कृष्ण, आपने मुझे अनुकंपा, तत्तेनुकंपा आपकी अनुकंपा है कि मेरे इतने इतने पाप थे कि जिनका हिसाब चुकाना ही मुश्किल था, आपने मेरे उन पापों को इतना घटा के मुझे दिया जरा सा। जैसे प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए अमेरिका में एक बार टेंपल प्रेजिडेंट पहुंचे तो वहां मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो लंगड़ा, उनके पैर में कील चुभ गई, तो वो लंगड़ा के चल रहे थे। प्रभुपाद जी रिसीव करने पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? कि प्रभुपाद जी ऐसे वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ चीज पड़ी हुई थी, कील थी मेरे पैर में लग गई, मेरे कट लग गया। प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा, देखा भगवान ने तुम्हें बचा लिया, आज तुम्हारे भाग्य में पता नहीं पैर कटना लिखा था पूरा का पूरा, और एक छोटी सी स्क्रैच से तुम्हें भगवान ने कर्म को निकाल दिया। ये भक्तों की मेंटेलिटी है, अनुकंपा मानते हैं वो भगवान की, और भुंजान एवाद में कर्तम विपाकम, जो मेरे उल्टे सीधे काम किए हुए हैं भुंजान, उनके कर्मों को मैं भुगत रहा हूं, और हृदवाग वपुर भी माइंड बॉडी वर्ड्स मन कर्म वचन से मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं। तो क्या होगा एंड में, जीवे त्यु मुक्ति पदेश दाए भाग। जैसे कि एक करोड़पति आदमी है, उसका लड़का पिताजी के पास बैठा रहता है, पिताजी कहता है जाओ बेटा प्रसाद खा लो, प्रसाद खा लिया, चलो कुछ पढ़ लो, पढ़ लिया, जो पिताजी कहें करता रहता है, ज्यादा उसकी रुचि नहीं है किसी चीज में, बिजनेस में उसकी रुचि नहीं है। पिताजी कहते हैं भैया ये बही खाता समझ ले, चेकबुक समझ ले, कि पिताजी बन गया, अब कुछ ज्यादा कर्म में नहीं है लेकिन पिताजी में भरोसा है कि पिताजी के साथ बैठा हुआ है। एंड में क्या होगा, जब पिताजी करोड़ रुपए छोड़ के आएंगे, इसे मिलेगा बेटे को मिलेगा। ऐसे ही भक्त लोग हैं, मुक्ति पे हमारा अधिकार है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि भगवान में मर्ज हो जाए या भगवान जैसे बन जाए, मुक्ति का मतलब है स्वरूपेण अवस्थिति, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, स्वरूप में स्थापित होना मुक्ति है। हमारा स्वरूप क्या है, जीवरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये हमारा स्वरूप है कोई भी सेवा हो, क्योंकि रिलेशनशिप भगवान से संबंध बनाने का एकमात्र तरीका है भक्तिया माम भी जानाति। भक्ति का मतलब भज धातु पर प्रभुपाद जी ने बताया, भज धातु का भजन क्रिया का मतलब है, भक्ति का मतलब है एक्टिव डिवोशनल सर्विस, कुछ करना है भगवान के लिए, और करने के लिए इंस्पिरेशन करने के लिए डिटर्मिनेशन कहां से आएगा? मानस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए ये जो सर्वधनमान परित्यज्य है, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधनमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मा शुच का मतलब है डरो मत। डरे हुए क्यों हम लोग? जैसे अमेरिका में या इंडिया में भी कारों के पीछे लिखा होता है नो फियर। नो फियर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फियर है, डर है। सर्वे हुआ, लोगों से पूछा क्या आपका सोचना है, किस बात का डर है आपको? कि डर है कि मुझे बीमारी कैंसर ना हो जाए, डर है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कि डर है। भगवान कहते हैं मत डरो। क्यों? कि मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूं। तो ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में कहा यस्तु इंद्रिय अथवेन्द्रिय इंद्र गोपा, कि चाहे तो तुम स्वर्ग के राजा इंद्र हो और चाहे गोबर में रहने वाले कीड़ा जिसका नाम इंद्र गोपा है तुम वो हो। कर्मानुरूप मभी, तुम्हें अपने कर्म का फल भुगतना होगा। कोई बच नहीं सकता कर्म के फल से। जो कर्म किया उसकी रिएक्शन आके रहेगी। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति भाजन, जो भक्ति के भजन में लगे हुए हैं उनके कर्मों के रिएक्शन को निर्दयति ये माला जला के राख कर देती है। ये तो कौन माला करता? क्या मोटिवेशन है माला करने का? भगवान के प्लेजर के लिए। जैसे लोग, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहीं आते लोग मोदी 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 लोग कहते हैं ना मोदी, ऐसे हम लोग कृष्णा 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 कृष्णा, हम लोग ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है कि हम उनकी भक्ति में है। कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है कि हम उनकी माला कर रहे हैं। उनके प्लेजर के लिए, उनके आनंद के लिए मैं अपना सब कुछ लगाना चाहता हूं। क्योंकि धन यौवन यूं जाएंगे जा विधि उड़द कपूर, ये धन और यौवन ऐसे चले जाएंगे जैसे कपूर। कपूर साहब नहीं, कपूर जोड़ जाता है कभी कपूर। तो कपूर क्या है? कैम्फर, जो कि शीशी बंद करके रखो। जैसे हमारे वहां हम लोग यहां से कपूर खरीद के लेके जाते थे मंदिर में आरती करने के लिए, तो डिब्बे में रख देते थे। तो जैसे कोई पुराना डिब्बा भूल गया कहीं रखे, जब खोला तो उसमें सब कुछ खाली, सब खोके रखे हुए हैं कागज के, अंदर से कपूर उड़ चुका, ऐसा हो जाता है। तो ये जो धन यौवन है, जो हमारे पास आज पैसे हैं, जो हमारे पास ये बॉडी है, ऐसे उड़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और जब ओल्ड एज आती है तो बहुत तेजी से स्लाइड होता है आदमी। एक बीमारी जहां लगी वो दूसरी और तीसरी और चौथी और पांचवी, और उसके बाद हरिनाम सत। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। एक भी क्षण हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते। सुबह से शाम तक आज हम यही देखना है कि क्या हमने किया। रिव्यू करना होता है, शाम को बैठ के देखना होता है कि आज दिन भर में कितनी माला हुई, शांति से माला हो पाई नहीं हो पाई, भक्तों से कोई अपराध तो नहीं हो गया किसी के प्रति, अगर हो गया हो तुरंत जाके माफी मांग लो। ये सबसे बड़ी, हमें भगवान के पास जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सिर्फ एक ही चीज है जो रोक देगी, वो क्या है? वैष्णव अपराध। प्रभुपाद जी ने गारंटी ली हुई है सबकी कि जो भी इस कौन में आएगा 4 बजे उठेगा, 16 माला करेगा, 4 प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगे, वो बैक टू गॉड हट जाएगा। और इस बैक टू गॉड हट जाने में एक ही, सिर्फ एक अड़चन है, वो अहंकार और भक्तों के प्रति व्यवहार। ये चीज खा जाएगी हम लोगों को। इसलिए डेली जिससे लड़ाई हुई उससे भी, और जिससे लड़ाई नहीं हुई उससे भी माफी मांगते चलो, माथा टेकते चलो। क्योंकि भक्तों को वैष्णव अपराध से बड़ा कोई डेंजर नहीं है। एक श्लोक में आया भी भागवतम में कि मैं इंद्र के थंडर बोल से नहीं डरता, मैं बिजली कड़के मेरे ऊपर गिर जाए उससे नहीं डरता, मैं डरता हूं तो बस वैष्णव अपराध से। कहा उन्होंने महाराज रावगढ़ की कथा में ऐसा आया। तो यहां पे ये समझने की बात है कि इस संसार में जैसे सिकंदर की कहानी है, जब भारत आया अटैक करने के लिए तो उसने देखा नदी के किनारे संत लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, जाके उसने कहा कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मांगिए क्या मांगना है। तो साधु संत जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा बहुत अच्छे महाराज, आपके दर्शन हुए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब आप खड़े हुए नहीं थे हमारे सामने तो सूरज की सीधी किरणें हमारे ऊपर आ रही थी, तो हम भगवान का भजन कर रहे थे, अगर आप हट जाएंगे सामने से तो धूप सीधी हमारे ऊपर आएगी, इतनी कृपा करनी आपसे, बस इतना ही मांगना है। सिकंदर ने कहा पैक करो भाई सामान को, क्यों इनको रूल नहीं कर सकते हम लोग, इन्हें सेंस ग्रेटिफिकेशन इच्छा नहीं है, इनकी इंद्रियां तृप्त हैं भगवान की भक्ति में, इनको किसी प्रकार का माया का प्रलोभन मैं नहीं दे सकता, नहीं तो क्या है लोग 10-10, 12-12 घंटे गधे की तरह काम करते हैं, काहे के लिए पैसा मिलेगा, पैसे से क्या गाड़ी बंगला एंजॉयमेंट के साथ, लेकिन भक्त लोगों को ये चीजें अपने आप, इन चीजों से भक्त लोग मुक्त हो जाते, क्योंकि ये जो माला है ये प्रोसेस, ये माला का, जैसे कि लोग हमारे यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग कहीं ना कहीं किसी कर्मी बैकग्राउंड से जुड़े होंगे, सेकंड जनरेशन के अलावा जो बच्चे इस कौन में जन्म ले रहे हैं वो तो पैदा होते ही भजन गा रहे हैं, उनकी तो बात छोड़ दो, ऐसे ऐसी बहुत वीडियो रखी हुई है कि बच्चा पैदा हुआ पूरा मंत्र याद है, पूरी भगवान के सारे भजन याद है बच्चों को, जैसे जैसे 2-2 साल के बच्चों को, 1-1 साल के बच्चों को, क्यों, क्योंकि वो तो सेकंड जनरेशन है। लेकिन हम लोग यहाँ सब लोग जो हैं, हम लोग अपने यंग एज में हम लोगों ने चाय भी पी होगी, प्याज भी खाया होगा कुछ लोगों ने, तो सब छोड़ दिया हम लोगों ने, कहां से ताकत आई, कहां से पावर, कहां से इंस्पिरेशन मिली कि आज के बाद मैं चाय के हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं प्याज के हाथ नहीं लगाऊंगा, अंडा और मीट तो छोड़ दो दूर की बात है। ये ताकत कहां से आई, भक्तों के संग में, भगवान के नाम से, और उसी को पकड़ के चलने का हमारा लाइफ का उद्देश्य है कि हम एक भी दिन सोच नहीं सकते कि हमें भक्तों का संग नहीं चाहिए या नहीं मिला। और ऐसे ही जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे इंद्र को एक बार ब्रह्मा ने श्राप दे दिया कि तू जा और जाके सुअर की योनि हो जा। अब इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन अभी चूंकि श्राप मिला तो वो सुअर बन के पृथ्वी पर आ गए, और क्या कर रहे हैं आगे, जो सुअर को लैट्रिन बहुत पसंद होती है तो वो लैट्रिन खा रहे हैं और आवाज गूंगू की आवाज निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, और सूरी साथ में है, पिगलेट्स हैं, बच्चे बच्चे सब हैं, और अपने फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट, कीचड़ में पड़े हुए, आहा क्या मजा आ रहा है, क्या आनंद का कीचड़ है, क्या बात है, ये सूरी मेरी वाइफ कितनी सुंदर, बढ़िया, जब चाहूं जब चाहूं चीज, मना नहीं करती कुछ भी किसी बात को, आज्ञाकारी है, कोऑपरेटिव है, अरे ये बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, नाइस नाइस। अब इंद्र जब श्राप का टाइम पूरा हो गया, ब्रह्मा जी लेने आए, चलो भैया तुम्हारे श्राप का टाइम पूरा हो गया है अब तुम चलो, तो बोले नहीं नहीं अभी मैं जा नहीं सकता, प्रेग्नेंट है वाइफ, बहुत बिजी हूं मैं, और ये इतने सारे बच्चे कौन देखेगा इनको, मेरे अलावा मेरा कोहरा कौन है इनका। ब्रह्मा ने कहा भैया तू ईश्वर का राजा इंद्र है, ये श्राप भुगतने आया हुआ है तू अपना, चल। कि नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मैं यहां ठीक हूं बिल्कुल, बढ़िया सब कुछ, सब फिट एकदम। तो इंद्र को उनको मार के लेके जाना पड़ा, फिर हम भक्त लोग कई बार की जो खींच के ले आते हैं, चल चलना पड़ेगा। जीवन में कई बार अटैचमेंट हम लोगों को खा जाता है, जैसे कि मैं रुड़की का रहने वाला हूं, तो हम लोग रुड़की से बरेली जाया करते थे, हमारे भाई रहते थे, तो एक ट्रेन चलती थी सहारनपुर लखनऊ वाली, तो उसमें बैठ के रुड़की से सुबह 7 बजे चलते थे, एक लखनऊ एक्सप्रेस शाम को चलती थी वो ट्रेन 6-7 बजे, और 4 बजे सुबह वो बरेली पहुंचती थी। अब एक बार हम लोग ट्रेन में सोए और सोते रह गए, अब जैसे ही पता लगा अरे बरेली आ गया, चप्पल उठा, ये उठा, वो उठा, फटाफट फटाफट भागे, किस बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे, चप्पल भी बाहर फेंकी, सामान बाहर फेंका, लोगों ने नीचे उतारा गाड़ी चलने को। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो चूंकि उस जमाने में एसी वेसी इतने नहीं हुआ करते थे, 30-40 साल पुरानी बात है, तो उतरने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, फिर भी उतर गए, क्योंकि बहुत नहीं तो क्या है, अगर कोई एसी एयर कंडीशन में सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में है कि यहाँ मैगजीन होल्डर में मैगजीन रखी हुई है, यहाँ चश्मा रखा हुआ है, यहाँ पानी की बोतल है, यहाँ मेरा ये सामान है, वहां वो पूरा सेट करके ट्रेन में बैठे हुए हैं, आराम से फिट हो गए। लेकिन जब स्टेशन आएगा तो टिक नहीं पाएगा, उतरता भागता नजर आएगा। तो ऐसे ही हम लोग इतना ना फैल जाएं इस डिब्बे के अंदर, संसार के रेल के डिब्बे में, कि जब निकलने का टाइम आए तो पकड़ते रहे चीजों को, इसको भी ले लो, इसको भी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सिकंदर ने जब मरने का टाइम आया तो अपने प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि मैं पूरी दुनिया को जीतने में मैंने सारी जीवन लगा दिया, अब मेरे कुछ प्रोजेक्ट बाकी हैं, अगर मुझे 6 महीने का समय और मिल जाए। तो डॉक्टरों ने कहा कि नो सर, 6 महीने क्या, 6 दिन भी नहीं है। तो क्या मैंने पूरी जिंदगी इन सब चीजों को इकट्ठा करने में लगाई, आज वो सारी चीजें मुझे मिलके, जो समय मैंने 20-25-30 साल का लगाया, आज मुझे वो सारा सामान 6 दिन नहीं दे सकता। तब सिकंदर ने कहा ठीक है, अब जब मैं मर जाऊं तो मेरी 3 इच्छाएं हैं, जहां मेरी कब्र बनेगी उसके रास्ते में सारे हीरे जवाहरात जड़वा देना, जो मेरा ताबूत जिसके अंदर मुझे लेके जाओगे उसमें 2 होल बनवा देना, मेरे हाथ बाहर ऐसे करवा देना, और जितने भी तुम वैद्य और डॉक्टर हो मैं चाहता हूं मुझे कैरी करके तुम लोग लेके जाओ। तो लोगों ने पूछा कि महाराज आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जितने हीरे जवाहरात इकट्ठे करे मैं बताना चाहता हूं, सब रास्ते में पड़े, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ बाहर है। और तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूं मुझे लेके जाना ताकि मैं बता सकूं दुनिया को, कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, डॉक्टर की दवाई काम नहीं आएगी, जितने अपने हैं सब पीछे खड़े रह जाएंगे, थोड़ी देर तक रोएंगे, उसके बाद ये देखें कितना पैसा छोड़ के गया। और कई बार तो ये भी सोच रखते हैं कि कब मरेगा, ये मरे तो पैसे मिले। ये संसार का सच्चा बिल्कुल प्रकट रूप है कि लोग कहते हैं हे भगवान मुझे उठा ले, और बच्चे कहते हैं हे भगवान इसे उठा ले, क्योंकि उन्हें क्या है, मरने का इंतजारी तो है। जो लोग हमें, लेकिन मेरे कलेजे का टुकड़ा है ये बच्चा, मेरे पोते मेरे बच्चे कलेजे के टुकड़े हैं, कलेजे के टुकड़े ही फूकने जाएंगे लेके, अटैचमेंट नहीं होना, ड्यूटी कर्तव्य पूरा करना है हमारा, जो कर्तव्य है समाज के प्रति देश के प्रति, और इस कर्तव्य की पूर्ति, जो यहां पे बात आई कि गुरु न सस्यात जननी न सस्यात सुहृदम न सस्यात न मोच ये यदि, कि तुम्हें गुरु हो तो गुरु बनने का अधिकार नहीं है, मां बाप हो तो मां बाप बनने का अधिकार नहीं है, तुम अगर फ्रेंड हो तो तुम्हें फ्रेंड बनने का अधिकार नहीं है, जब तक कि तुम अपने इन बच्चों को अपने इन शिष्यों को भगवान से जोड़ के भगवान पे भगवत धाम की प्राप्ति का मार्ग दिखा के नहीं जाते तो तुम्हारा ये सब रोल बेकार है। इसलिए आज इस्कॉन के अंदर जो हम देखते हैं, क्योंकि इस्कॉन का मूवमेंट क्यों इतना वाइड स्प्रेड है, आज क्यों बराबर फैलता जा रहा है वाइल्ड फायर की तरह, हर शहर में मंदिर खुल रहे हैं, एक ही डिवोटी काफी होता है, एक डिवोटी पहुंचता है और मंदिर खुल जाता है लाखों करोड़ों रुपए का। इवन भक्तों के पास में लोग पैसे लेके खड़े रहते हैं कि प्रभु हमारे पास करोड़ों रुपया है, जैसे आपने ये मंदिर बनाया हमारे शहर में भी ऐसा ही मंदिर बना दो। मुझे याद है तिरुपति के मंदिर के जो रेवती रमन प्रेसिडेंट है, तो लोग उनके पास आते हैं कि जितना भव्य मंदिर आपने ये बनाया तिरुपति का, ऐसा ही मंदिर वहां बनवा दो, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्कॉन के भक्त 99.99% भक्त शुद्ध कार्य करते हैं, भगवान का पैसा जो आया भगवान की सेवा में लगा देते हैं, सबसे कम खर्चा इस्कॉन के भक्त करते हैं अपने लिए, धोती कुर्ता 2 वक्त का प्रसाद, कुछ नहीं चाहिए भक्तों को, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये इस्कॉन का। कुछ हो सकते हैं भक्त जो 0.01% हम उन पर ध्यान नहीं देते, जो माया से ग्रस्त हो जाते हैं कई बार, कुछ चीजों में गलत में पड़ जाते हैं, हम उनको काउंसलिंग करके सही करके उनको ट्रेन करना चाहते हैं, ना कि उनसे हेट करना चाहते। लेकिन ज्यादातर भक्त भगवान के आयुर्वेद लक्ष्मी को भगवान की सेवा, जैसे और मंदिरों में और संस्थानों में जो मंदिर है वो तो बहुत गंदा वगैरह रहता है, भगवान का विग्रह भी इतना नहीं, और जो उनके घर है उनके घरों में महल की तरह घर होता है, गाड़ियां होती हैं। तो ये चीज, इसीलिए ये सब देखने के बाद आज जिस भी जगह तुम बता दो, जैसे मैं अभी कल परसों डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR डायरेक्टर जनरल से मिलने गया किसी मामले में कि कैसे विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि आज इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम किस तरीके से हम इस नॉलेज को, हमारे यहां अभी रिसर्च हुई, अब क्या रिसर्च चल रही है आजकल, जो इस्कॉन के बड़े बड़े डिवोटीज जो रिसर्च में लगे हुए, कहीं के रिसर्च में लगे हुए, प्रचार में कैसे प्रचार कर रहे हैं कि जो डांस में आंखों का मूवमेंट है ऐसे, उससे ब्रेन की बीमारियां ठीक हो जाती है। लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च करके प्रूव किया, वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट हुए कि जब तुम माला करते हो, माला कर रहे हैं, हार्ट के ऊपर तमाम कार्डियोग्राम सेंसर्स लगे हुए हैं, माला कर रहे हैं, वहां रिकॉर्डिंग हो रही है, एक दूसरा बंदा बैठा हुआ है वो माला नहीं कर रहा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, उसकी हार्ट बीट, उसका वेवलेंथ सब बिगड़ी हुई है, क्योंकि चिंता में डूबा हुआ है, और भक्तों की शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलैव अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव प्रशांत। उनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें डिजायर्स हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो। इसीलिए हरे कृष्णा मंत्र में इस्कॉन में भुक्ति मुक्ति सिद्धि का ये हो चुका, जो ये है कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, कि चाहे तो तुम्हें बहुत डिजायर है, जैसे हमारे इस्कॉन के भक्तों में कहीं कहीं डिजायर आ जाती है, और चाहे तुम्हें कोई डिजायर नहीं है, चाहे तो तुम डिजायर काम से भरे हुए हो, इच्छाओं से भरे हुए हो, और चाहे बिल्कुल निष्काम हो, अकामा सर्व कामो वा, और फिर तुम उसके ऊपर मोक्ष कामा मोक्ष की इच्छा हो गई हो कि भैया हमें तो मोक्ष चाहिए, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेण भक्ति। अब तीव्रेण वर्ड क्यों यूज हुआ, तीव्रेण का मतलब है इंटेंसिफाइड डिवोशनल सर्विस, ऐसा नहीं कि अभी प्रसाद खा लिया है अब हम आराम करते हैं, ये हमारे आराम का टाइम है, प्रभु आपकी एक सेवा में हेल्प चाहिए, अभी हमारे आराम का टाइम है, तीव्रेणा का काम हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जितना तीव्रेणा इसके अंदर होगा इंटेंसिफाइड होगी ये भक्ति, जैसे भक्त लोग एकाशी निर्जल रखते हैं तीव्रेणा, लेकिन ऐसे भी निर्जल नहीं रखते कि मैं खाट पे लेटा हूं निर्जल हूं, ना माला कर पा रहा हूं, ना सो पा रहा हूं, ना बात कर पा रहा हूं, ना कोई सेवा कर पा रहा हूं, निर्जल हूं, ऐसा निर्जल भी नहीं होना चाहिए। आप निर्जल हैं तो लगे सेवा में और तेजी से, क्योंकि मुझे खाना कुछ है नहीं। जैसे एक बार हम लोग भोग बनाते थे, भोग लगाते थे, तो एक बार महाराज आए तो बोले कि कभी कभी भोग बनाओ, भगवान को ऑफर करो और कहो भगवान ये आपके लिए बनाया, मैं तो निर्जल हूं, तब जरा और आनंद आएगा कि सिर्फ भगवान के लिए बनाया, सिर्फ उनके प्लेजर के बनाया, मुझे तो महाप्रसाद भी आज नहीं, मैं कभी निर्जल हूं। कभी या कभी ऐसा करके देखना चाहिए, उससे पता लगेगा कि भक्ति में कितनी इंटेंसिटी है। अगर ऐसा लगे आज मुझे तो कुछ खाना नहीं, तो भगवान को एक केला ऑफर कर दो, ऐसी भगवान जी को वही 56 भोग लगेंगे, मैं नहीं ग्रहण करूंगा, मैं तो नहीं चलूं, मैंने व्रण लिया हुआ है, व्रत लिया हुआ है। तो ऐसी भक्ति, इस तरह से हम लोग एडवांसमेंट ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया एडवांसमेंट का तरीका है, अगर किसी को ये चाहिए कि मुझे जल्दी से एडवांस होना है, तो टीचिंग शुरू कर दो। लोग कहेंगे गेट आउट ऑफ हियर, डोंट टॉक टू मी, क्यों मुझे बताते हो, तो तुम कहोगे प्रभु आपके हित में है, आप ये किताब पढ़ेंगे, रखे वो एक श्लोक भी है कि काकोशतम एतद अहम ब्रह्मिमी, हे साधवो सकल विहाय दूराद दंते निधाय तिनकम पदयोर निपत्या, कि मैं दांत में तिनका लगा के आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। काकोशतम 100 बार हाथ जोड़, एतद अहम ब्रह्मिमी, मैं कहना चाहता हूं आपसे हे साधवो और लर्नेड मैन, सकल विहाय दूराद वॉट एवर नॉनसेंस, जो भी तुमने नॉनसेंस लर्न किया अब तक छोड़ दो सब उसको। तो क्या करूं, सब छोड़ दूं? कि हां क्या करना है, चैतन्य चंद्र चरणे करता अनुराग, भगवान कृष्ण चैतन्य को पकड़ लो, क्योंकि कलयुग में चैतन्य रे दया रखकर हो विचार, विचार करी बजे में चित्त पावे चमत्कार। जो चमत्कार किसी को देखना है, आज लोग चमत्कार के पीछे हैं, तुम्हारे मन की बात जान ले चमत्कार है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार हमारे चित्त के अंदर है कि मैं पता नहीं कितनी 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 चीजों से अटैच था। लोग मुझे कहते हैं भाई आपके इस्कॉन में हमें एक बात नहीं समझ में आती। बोलिए क्या समझ नहीं आपकी, कि हमारे वहां शामली में कोई गुरु आए तुम्हारे और उन्होंने मंत्र मंत्र बताया लोगों, चैंटिंग सिखाई, तो हमारे एक रिलेटिव थे वो डेली शराब और चीन, उनका डेली का था। अब शराब तो क्या, सिगरेट तो क्या, वो बगैर ऑफर किए भगवान को भोग लगे प्रसाद तक, जब तक नहीं मिलता कुछ नहीं खाते। क्या तुमने कर दिया? मैंने हमने क्या कर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मंत्र चैंट करो, इति शोर्ट शकम नामम, 16 शब्दों से बनाया मंत्र, कली कलमश नाशनम, कलयुग के समस्त पापों का नाश कर सकता है, न तो पड़ता उपाय, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। मैं व्यासदेव खुद कह रहा हूं, सर्वे देशु दृश्यते, सारे वेदों की मैं रचना की, व्यासदेव कह रहे हैं कली 97 उपनिषद में, 16 शब्दों से बना हुआ मंत्र, जो भी चैंट करेगा कलयुग के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। खलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महद्गुणा, कीर्तना दिए कृष्ण से मुक्त संग परम जय। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब सुखदेव गोस्वामी के ने बताया कलयुग में क्या अल्प आयुषा मंद सुमंद मतियो सब उपद्रता, कलयुग का ऐसा खराब समय आने वाला है, क्या होगा? तब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि खलौ दोष निधे राजन, वो राजन वो किंग महाराज, ये कलयुग दोषों की खान है, निधे समुद्र है, अस्ति एको महद्गुणा, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा गुण है कलयुग में, हमारे दो ही फ्रेंड हैं कलयुग में, सबसे बड़ा गुण क्या है, कीर्तना दिए कृष्ण से, भगवान का नाम लो और सब झंझटों से मुक्त। तो जो ये कलयुग है ये हमारी दवाई है, जो बुढ़ापा है ये हमारी दूसरी दवाई है। तो हमें बुढ़ापा पसंद है और हमें कलयुग पसंद है, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और शिथिल होने के बाद अग्नि में घी डाल के और आग भड़काने की बजाय भक्त लोग माला करके अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे शांत करते, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, मैं पहले ये खाता था, पहले ये करता था, अब सब चीजों में शांति होती जा रही, धीरे धीरे शांत, कोई एजिटेशन नहीं, कोई भड़कने वाली बात नहीं, कोई तरह तरह की दवाइयां गोलियां खा खा के और उत्तेजना की बात नहीं, सिर्फ क्या कि ये भगवान के जितनी ताकत शरीर में दिखाओ, 4 नहीं 2 बजे उठो, 16 नहीं 25 माला करो, अपनी सारी ताकत को झोंक देना है इस हरे कृष्णा महामंत्र की अग्नि में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की